ओम शांति। इजिप्ट के एक राजा को एक बड़ी अनोखी धुन सवार हो गई। वो शतरंज खेलता था और धीरे धीरे चेस खेलते खेलते वो इतना उसमें खो गया कि वो शतरंज उसके लिए जुनून सा बन गया। शतरंज के घोड़े, शतरंज के हाथी उसके लिए वास्तविक हो गए। बात यहां तक बढ़ गई कि जब युद्ध का समय होता था वो कहता था शतरंज के घोड़े ले जाओ युद्ध करने के लिए, वो कहता था शतरंज के हाथी ले जाओ युद्ध के लिए। लकड़ी के घोड़े बनाए गए जैसे शतरंज में होते हैं और लकड़ी के हाथी। मंत्रियों ने कहा कि आपका मानसिक संतुलन खो गया है, कुछ करना चाहिए। उसमें से एक अति बुद्धिमान बूढ़ा मंत्री था, उसने समझाया कि शतरंज खेल है और जीवन अलग है। खेल जीवन नहीं और जीवन खेल नहीं। बाकी मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की पर राजा नहीं समझा। और आखिरकार उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने एक उपाय बताया। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, सब लोग कहते हैं मैं बीमार हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबने आपको कहा शतरंज छोड़ दो पर मैं आपसे कहता हूं कि आप शतरंज को ना छोड़ो। यहां तक कि इस देश के जितने बुद्धिमान लोग हैं उन सबको बुलाया जाए और उनके साथ आप दिन रात ये खेल खेलो। और वैसे ही होता है, बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं और राजा के साथ चेस खेलते हैं दिन रात, और खेलते 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 राजा को अनुभव होता है कि ये शतरंज का खेल शुरुआत होता है और उसका अंत भी होता है, और वो जीवन नहीं, जीवन अलग है। और धीरे धीरे वो अपनी बीमारी से मुक्त हो जाता है। ये कहानी बड़ी अटपटी सी है परंतु रहस्यवादियों ने इस कहानी का आधार लेकर बड़े गहरे निष्कर्ष निकाले हैं। हम भी कई बार जीवन को इतना सीरियसली और इतना गंभीर रूप से लेते हैं, या फिर कभी कभी इतना हल्का लेते हैं कि उसके अंदर का जो खेल है वो खोया जाता है, या फिर इस खेल को इतना गंभीर लेते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि वास्तविकता कुछ और है। जैसे उस राजा के लिए वो खेल ही वास्तविकता हो गई और किसी के लिए ये जीवन ही वास्तविकता हो जाती है, ये भूल ही जाते हैं कि इसके अंदर भी एक खेल छिपा है। यदि आप यहाँ बैठे हैं और आपको कहा गया कि आप वास्तव में नहीं बैठे हो, आप एक्टर्स हो और यहाँ फिल्म की एक शूटिंग हो रही है, तो आपको ऑडियंस का प्ले रोल प्ले करना है, तो आप कैसा करेंगे? अभी वास्तव में हो ऑडियंस, पर कहा गया कि आप एक्टर्स हो और ये एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, दूर से आपको दिखाना है, दिखावा करना है ऑडियंस होने का, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। कौन सा अंतर? अभी वास्तविक ऑडियंस है, सुन रहे हैं, पर यदि आपको कहा गया अभी यहां फिल्म वालों की टीम आएगी और वो शूटिंग करेगी और ये एक मूवी है जो चल रही है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? थोड़ी सीरियसनेस कम हो जाएगी, उसमें एक सूक्ष्म चीज हो जाएगी, कर्ता खो जाएगा। दुख का कारण है कर्ता, वहां कर्म होगा परंतु कर्ता नहीं रहेगा। जो राम की एक्टिंग कर रहा है वो भी दुखी होता है, वो भी रोता है कि मेरी सीता किधर है, पर उसने रिहर्सल की है। हो सकता है जो ओरिजिनल राम है उससे वो, उसके पास रिहर्सल नहीं थी, उससे ये थोड़ा ज्यादा ही एक्टिंग करे, पर जब उसे पता है कि मैं एक्टर हूं और एक्टिंग कर रहा हूं, तो कर्ता खो जाता है। और जैसे ही कर्ता खो जाता है, स्ट्रेस टेंशन कम हो जाता है। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम भी अभिनेता है और अभिनय कर रहे हैं, और ये सृष्टि भी एक रंगमंच है और सृष्टि भी एक नाटक है जिसमें ये खेल, ये खेला चल रहा है। और यदि हम ये भाव दशा बना ले कि हम एक अभिनेता है और हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो कर्ता का भाव है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, टेंशन पैदा करता है, वो नहीं रहेगा। हमें कहा गया है कि तुम्हें रोने की एक्टिंग करनी है, तो कैसे करोगे? और ज्यादा रोएंगे, पर अंदर से रोएंगे क्या? वो आंसू कहां से निकलेंगे? ऊपर ऊपर से। श्री राम चिल्ला रहे, खग मुग मृदिकर मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नयनी, रामचरित्र मानस की चौपाई है। हे खग मुग मृग मधुकर श्रेणी, वो राम ढूंढ रहे हैं कहाँ है सीता, परंतु जो एक्टर राम है वो भी सेम कर रहा है, परंतु भीतर से दुखी नहीं है, भीतर से उदास नहीं है। कर्ता का खो जाना ही कर्मयोग है, कर्ता का खो जाना, कर्म रह जाए कर्ता गायब हो जाए, इसी को संपूर्णता, स्थित प्रज्ञ योगी या फरिश्ता स्थिति कहा जाता है, जहां हम कर सब रहे परंतु फिर भी भीतर अलिप्त है, भीतर निर्लेप है। ये कर्ता भाव, ये मैं जो तनाव पैदा करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और जितना बड़ा पद उतना बड़ा पत्थर छाती पर, चाहे वो प्रधानमंत्री पंत प्रधान हो वाला मैं है या फिर किसी गांव का सरपंच, उसमें भी वही मैं काम कर रहा है। तो जीवन इस कर्तापन से बोझिल हो गया है, हम भूल ही गए कि हम कौन हैं। इस संस्था में दादी जानकी थे, आप सबने उनको देखा होगा या नहीं भी देखा होगा या नाम सुना होगा। 104 वर्ष तक वो जीवित थे। उनका एक प्रश्न रहता था, विशेषतः जब ब्रह्मा कुमारी या बहनें बैठती थी तो दादी पूछती थी, तुम कौन हो? कठपुतली हो, सेवाधारी हो या निमित्त हो? यह प्रश्न था। निमित्त अर्थात मैं माध्यम हूं, एक चैनल, एक यंत्र, एक मशीन जिसके द्वारा यह हो रहा है वो तुम हो। या फिर कठपुतली हो, उनको चलाने वाला ऊपर है, सारे धागे उसके हाथ में, या फिर सेवाधारी हो। वास्तव में उत्तर है ये तीन अवस्थाएं हैं। पहला तो सेवाधारी है, हम सेवा कर रहे हैं पर उसमें मैं है, मैं करता हूं। उसके थोड़े आगे की अवस्था है कि मुझे निमित्त बनाया गया है। पानी की टंकी ऊपर है, मैं नल हूं, उस पानी ने, उस टंकी के पानी ने इस नल से आना स्वीकार किया है, तो महिमा इस नल की है या उस टंकी की? टंकी ने सोचा है। बांसुरी कहती है मेरा संगीत कितना अच्छा है, तो क्या कहेंगे? वो किसका संगीत? वो उस मुरलीधर का संगीत है, बांसुरी का नहीं। और उसके भी आगे स्टेज है समर्पण की, कि हम कुछ है ही नहीं, मैं नहीं तुम, थाई विल शैल बी डन, क्राइस्ट कहता है, तेरी इच्छा। हम कौन है सारे? कठपुतलियां है, चलाने वाला वो है। ये समर्पण की वह भावदशा है गहरी। होई सोई जो राम रचि राखा, जैसे उसने सोचा है, लिख के रखा है, वैसे चलना। ये तीन अवस्थाएं हैं। अपने आप से पूछना है, हम अपने आप को क्या समझते हैं? सेवाधारी से नीचे भी एक दूसरी भी अवस्था है। सेवा तो है ही नहीं, मैं करता हूं सब कुछ, वो एक अवस्था है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। एक जोक बताया जाता है, आपने बिरला टेम्पल सुना है, देखे हैं बिरला टेम्पल्स? तो जोक सुनाया ऐसा जाता है कि बिरला जो थे, उन्होंने शरीर छोड़ा और भगवान के पास पहुंचे। भगवान पूछते हैं, तुमने क्या किया? वो कहता है, बिरला टेम्पल बनाए। पूरे भारत भर में बिरला टेम्पल है। सबसे पहला तो दिल्ली वाला है, जो स्वयं महात्मा गांधी ने जिनका इनॉग्रेशन किया था। भगवान पूछते हैं, मंदिर किसका है? वो कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का। नाम किसका दिया? नाम किसका दिया? बिरला टेम्पल। तो मनुष्य की अलग अलग भाव दशा है, अलग अलग स्थिति है। हम इनमें से किस स्थिति में है? जितना अधिक मैं पर और जितनी अधिक पकड़, उतना बोझ, उतनी पीड़ा। मैं करता हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे होना चाहिए, तुमको वही करना है जो मैंने कहा। मेरे बच्चे हैं, इन्होंने वैसा ही होना चाहिए जैसे मैं हूं। एक व्यक्ति के घर पर खिड़की में एक पक्षी आकर बैठता है। वो व्यक्ति देखता है ये कैसा अजीब पक्षी है, वो उसको पकड़ता है, कहता है इतनी बड़ी चोंच ये अच्छी नहीं है, तोते की चोंच इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो कैंची लेता है, चोंच को काटता है, फिर देखता है पंख थोड़े ज्यादा बड़े हैं, एक तोते के पंख इतने नहीं होने चाहिए, फिर पंख काटता है। कहता है इसका रंग ठीक नहीं है, तोता इस रंग का नहीं होता है, उसके हरे रंग से पेंट करता है, फिर रखता है और कहता है वाह अभी ये प्रॉपर तोता है, मेरे प्यारे तोते उड़। तोता उड़ेगा और वास्तविकता यह है कि वो तोता था ही नहीं, वो तो कोई और ही पक्षी था, ये तुमने सोचा था, ये तुम्हारी परिभाषा थी कि तोता ऐसा होता है और ये तोता है। ये हमको लगता है हम डॉक्टर इंजीनियर और बिजनेसमैन है तो हमारी जो संतान है वो भी ऐसी होनी चाहिए, अगर वो वैसी नहीं है तो उसके पंख काटो, उसको पेंट करो, तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहता हूं। और फिर उसको कहते अब उड़ो। कैसे उड़ेगा वो, क्योंकि वो नहीं है जो तुम हो, हर व्यक्ति अलग है और यही मैं मेरा और मेरी इच्छा, ये तीन सबसे बड़ी बाधा है, मैं मेरा और मेरी इच्छा, मेरे स्वप्न, इन तीनों में जो बाधा उत्पन्न करेगा वो हमें शत्रु भासता है। मेरे स्वप्न, मेरे स्वप्न के बीच और मेरे एम्बिशंस और डिजायर्स और करियर के बीच जो आएगा वो दुश्मन, और इसी चक्र में मनुष्य रहता है और इसलिए बोझ है। इसलिए जीवन में हम कोई गीत नहीं गा सकते, जीवन एक अविराम यात्रा है परंतु एक संगीत भी है, एक गीत भी है, निरंतर खुशियों का गीत गाते हैं। वो तभी होगा जब बहुत सी चीजें जो हम जबरदस्ती कर रहे हैं वो हम करना बंद कर दे। साइकोलॉजी में मनुष्य के स्वभाव के लिए एक शब्द है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, यह है प्रश्न। इसका उत्तर वैसा ही है पानी का स्वभाव कैसा है। पानी का अपना कोई स्वभाव नहीं है, वो जिस पात्र में डाला जाएगा वैसा वो बन जाएगा। इसको कहा जाता है इन्फिनिट लिक्विडिटी, अंतहीन तरलता। कोई ऐसे घर में जन्म लिया है जहां पर नॉनवेज खाया जाता है वो बचपन से नॉनवेज खाता है, कोई ऐसे घर में जन्म लेता है जो बचपन से वेज खाता है, शाकाहारी खाता है, उसे घृणा होती है उन लोगों से जो मांसाहार करते हैं, वो ढलता है वैसे ही, उसे जो सिखाया जाता है उसका अपना कोई चिंतन नहीं है, उसे बचपन से जो जो सिखाया जाता है वो सीखते जाता है सीखते जाता है। पर महानता इसमें नहीं है हमें क्या सिखाया है, हम अपना चिंतन अपना विचार अपना क्रिटिकल एनालिसिस जब तक नहीं करते तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं आएगी। आप सब यहां आए और जब से आए आपने बहुत सी बातें सुनी, इसलिए आपसे कह रहे कि अपने जीवन की इस ज्ञान की नई यात्रा की शुरुआत संदेह से करना, संशय से नहीं। संशय डाउट होता है, वो होता है कि जो आपने रिजेक्ट ही कर दिया, इसको मैं मानता ही नहीं, क्लोज्ड माइंड है। संदेह अर्थात ये क्या है, जिज्ञासा है उसमें, ये है क्या। और कोई भी बात जो यहां सुनाई जाए उन्हें अंधभक्त की तरह मानना नहीं, ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। तर्क करो, प्रश्न उत्पन्न हो, लिख के रखो अपने सारे प्रश्न, इसलिए नहीं कि किसी दीदी ने किसी भाई ने किसी महान लेखक ने वक्ता ने किसी किताब ने आकर हमें बताया कि ये करो या ये सत्य है या ऐसा, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये वो लोक है, हम क्यों माने? यात्रा संदेह से चालू हो तो ही वो जाकर हो सकता है निश्चय या विश्वास पे एंड हो, परंतु जो पहले ही विश्वास से चालू कर देते हैं कई बार, उनको फिर आगे जाके संदेह का सामना करना पड़ता है, आगे जाके इच्छाएं भंग होती है, आगे जाके अपेक्षाओं का भंजन होता है कि ये क्या, हमने तो सोचा था ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये कैसे निकल गए। इसलिए एनालिसिस, समीक्षा, सोचो, चिंतन करो, जो जो बातें यहाँ सिखाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है, उसे वैसे ही स्वीकार नहीं करना है। सोचो इस विषय में क्या है। हर एक के पास अपने जीवन का लंबे काल का अनुभव है। हमने भक्ति मार्ग में क्या कुछ नहीं किया, कितने गुरुओं की शरण ली, कितने मंत्र जाप किए, कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितने भजन गाए, कितनी राम कथाएं और कितनी भागवत सुने और कितने शास्त्र पढ़े, सब कुछ किया, पर क्या वो सब कुछ करके जीवन में शांति आई या धारणा आई या जीवन में कोई क्रांति आई? ऐसे सब कुछ करके तो माइंड को ओपन रखते हुए यहां बैठना है। सुनो, प्रश्न लिखो, मन में प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए कि ये लोग कौन हैं? सब जवान जवान लोग यहां क्या कर रहे हैं? यहां आए क्यों? किस लिए आ गए? ये दुनिया छोड़कर इस छोटे से गांव में? प्रश्न, विचार, चिंतन, समीक्षा, यहां से यात्रा शुरू हो तो बहुत अच्छा होगा। राधा दयान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इनका सब अच्छा है। ये अच्छा अच्छा कहने वाले बस अच्छा अच्छा करते चले जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा है, यहां से जाके भी दूसरों को बताएंगे, तुम लोग भी जाके आओ एक बार, बहुत अच्छा है, हॉल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, भोजन बात मत पूछो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पर्दे तो बहुत ही अच्छे, सब अच्छा है। क्रांति के लिए शौक चाहिए। अब तक जो हमारी धारणाएं थी, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था, उस पर एक कुठाराघात जब तक नहीं होता, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। हलचल हो, हलचल, जमीन में हलचल होती है पहले, फिर बीज डाला जाता है, वैसा भूकंप हमारे हृदय में हो। तो यहां ये मत समझना यहां हम आए हैं तीन दिन के लिए मन की शांति के लिए। शांति मिल जाए थोड़ी, संसार में बड़ा टेंशन है। बाइबल में एक सेंटेंस है, आई हैव नॉट कम टू एस्टैब्लिश पीस, आई हैव कम विद स्वॉर्ड इन माई हैंड। मैं कोई शांति स्थापित करने नहीं आया हूं, मैं तलवार लेकर आया हूं, तुम्हारी अब तक की जो धारणाएं थी उनको छिन्न भिन्न करने आया हूं, और बड़ी पीड़ा होगी। एक मां एक बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा से गुजरती है, यहां अपने ही गर्भ से अपना ही जन्म हो रहा है तो ऐसी ही पीड़ा से गुजरना होगा, तो जाके न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू बिलीफ सिस्टम, एक नई समझ का जन्म होगा। तो आज का हमारा विषय है गीत गाता चल। जीसस क्राइस्ट एक गांव से निकल रहे होते हैं, देखते हैं कुछ लोग बैठे और जोर जोर से रो रहे हैं। वो पूछता है क्यों रोते हो तुम लोग? वो कहते हैं हम रोते इसलिए हैं क्योंकि हमें नरक का भय है, नरक में पता नहीं कैसी कैसी यातनाएं हमको सहनी पड़ी, इसलिए हम रो रहे, बहुत दुखी है, सोच कर ही दुखी है नरक के विषय में। जीजस कहता है जाओ, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा। वो आगे बढ़ता है, देखता है दूसरा समूह है लोगों का। वो बड़े चिंतित है, उदास बैठे हुए हैं। वो पूछता है तुम क्यों उदास हो और क्यों चिंतित हो? वो कहते हैं हम चिंतित और उदास इसलिए कि कहीं हमारा स्वर्ग खो ना जाए, इसलिए हम उदास है, इसलिए हम चिंतित है। वो कहता है जाओ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठता। और आगे जाता है, एक तीसरा समूह दिखता है उसको लोगों का। लोग झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। वो पूछता है तुम लोग इतने खुश क्यों हो, कोई उत्सव है क्या? वो कहते हैं कोई उत्सव नहीं है, और कारण क्यों नाचते हो? वो कहते हैं हम नाचते हैं धन्यवाद की वजह से, उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं जिसने ये जीवन दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया। क्या यही कारण पर्याप्त नहीं है खुशी का? जीजस कहता है मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। ये कहानी बाइबल में नहीं है, परंतु ये कहानी सूफियों ने सुनाई है। उनका अपना एक दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। लाइफ इज सेलिब्रेशन। जीवन क्या है? उत्साह है, उत्सव है। डेथ इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन। मृत्यु भी क्या है ऐसे व्यक्तियों के लिए? एक उत्सव। दुखी नहीं, उदास नहीं, जीवन भी उत्सव तो मृत्यु भी उत्सव। लाइफ की शुरुआत बी से होती है, बर्थ। एंड होता है डी से, डेथ। और बी और डी के बीच में कौन सा शब्द है? अल्फाबेट सी, अर्थात चॉइस। ये चुनाव हमारे हाथ में है, खुश रहना है या दुखी रहना है। हम डिसाइड करेंगे, दूसरे नहीं। दूसरा आके अपमान करके चला जाता है, धोखा देके चला जाता है, परंतु मुझे क्या करना है, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। तो लाइफ इज चॉइस। तो आज के इस सत्र में निरंतर खुश रहना या निरंतर गीत गाने के लिए, ऐसे हम 12 सूत्रों की चर्चा करेंगे। और वो याद रखने हैं आपको। पहला सूत्र है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करना, एक्सेप्ट। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया, ऐ जिंदगी गले लगा ले। जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, हजार चीजें आएगी। कभी अपमान होगा, कभी प्रशंसा होगी, कभी फायदा कभी नुकसान। कोई अच्छे लोग आएंगे, कोई दुख देने वाले लोग आएंगे, परंतु संपूर्ण जीवन को जिसने स्वीकार किया है, उसके हर रंग को स्वीकार किया है, वो सुखी रहते हैं। स्वीकार करना अर्थात कमजोर होना नहीं, स्वीकार करना अर्थात हार मानना नहीं। अगर प्रशंसा को स्वीकार किया है तो निंदा को भी स्वीकार करने की शक्ति हो। अगर 100 लोग प्रशंसा करते हैं तो 10 तो आएंगे ना निंदा करने वाले, बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस भी तो होना चाहिए। कोई आके कहेंगे कि तुम तो बहुत ही तपस्वी हो, योगी हो, महान दिखते हो, बहुत ही गुणवान हो, देवता हो, सारे ऐसा कहते रहेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो आएंगे कहेंगे पाखंडी, फिर आ गए ढोंगी। और व्यक्ति सीखता किससे है ज्यादा, प्रशंसा या निंदा? अंतर्मुखी कौन बनाता है, प्रशंसा या निंदा? प्रशंसा होने के बाद तो व्यक्ति उड़ने लगता है। और जो हमारी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुमको देखकर तो एकदम देवता जैसा अनुभव होता है, हम उससे कहते हैं और क्या क्या लगता है थोड़ा और बताना, बहुत अच्छा लग रहा है इधर, बहुत अच्छा लगता है, उससे बार बार मिलना चाहते, मेरा नंबर भी ले लो। अगर कोई निंदा करने वाला तो वो इधर से और हम इधर से, उससे दूर ही रहना चाहते हैं। तो जीवन के प्रत्येक दृश्य को एक्सेप्ट एवरी सीन ऑफ दिस ड्रामा। ये जीवन एक रंगमंच है, सब एक्टर्स है, अलग अलग एक्टर्स है। कोई राम बनाए, कोई लक्ष्मण बनाए, कोई रावण बनाए, कोई हनुमान जी बने हैं। रावण लक्ष्मण को बहुत क्रोध है, ये रावण इतना जोर जोर से क्यों हंसता है। रामलीला चल रही है, सीता माँ रो रही है, परंतु थोड़ी देर के बाद देखो तो माँ सीता, रावण और लक्ष्मण पीछे बैठ के चाय पी रहे हैं, क्योंकि खेल चल रहा है। तो सबसे पहला सूत्र है क्या करना, स्वीकार। हर दृश्य को स्वीकार करो, हर दृश्य को, ये है तो वो भी है। इस संसार में दो फोर्सेस है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, सफलता है तो असफलता भी है। इसलिए उदास नहीं हो जाना, कोई एक एग्जाम, कोई एक जीवन की घटना, कोई एक बात हो जाती है और इतना दुख में चले जाते हैं कि निराश हो जाते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चढ़ती चींटी दीवारों पर 100 बार पिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। ठीक है, एक ही तो घटना थी, एक बात हो गई जीवन में, इतना क्या उसमें दुख, हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। इसलिए 2026 में एक नया शब्द इंग्लिश में ऐड हुआ है, इमोशनल रेंट। कोई किसी से प्यार करता था, उसने छोड़ दिया, ब्रेकअप, आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, पुराने चैट्स, पुराने गिफ्ट्स, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कॉल करे, उसके हम रिजेक्ट लिस्ट में है, उसको कोई और मिल गया है, वो आगे बढ़ चुका है और हम उसी को सोच रहे हैं, उसी के बारे में ये है, उसको किराया दे रहे हैं। इसको कहते हैं इमोशनल रेंट। ये न्यू वर्ड ऐड हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में 2026 में। तो एक्सेप्ट, ठीक है ये भी ठीक वो भी ठीक, एक्सेप्ट। दूसरा, बिलीव कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये जो नाटक बना हुआ है इसके हर दृश्य में कल्याण है, हर अकल्याण के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, हर नुकसान के पीछे फायदा छिपा हुआ है, हर दर्द के पीछे खुशी छिपी हुई है, हम उसे कैसा देखते हैं उसके ऊपर है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग मुझे कब मानेंगे, लोग मुझे कब पहचानेंगे, सब खराब लोग हैं। एक पेशेंट था जिसको ये था कि उसको बीमारियां है, डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर कहते थे कुछ भी नहीं है, वो फिर घर जाता था, इंटरनेट खोलता था, इंटरनेट पे सारा ढूंढता था, अच्छा अपेंडिसाइटिस कहाँ होता है, दर्द इधर, पूरा पढ़ता था और फिर अगले दिन पहुंच जाता था कि मुझे वही पेन हो रहा है। अखबार में कोई खबर पढ़ता था कि इस पेशेंट को कैंसर हो गया, किसी को, उसको लगता था मुझे कैंसर हो गया, जो जो वो पढ़ता था, जो जो वो देखता था, उसको लगता था उसको हो गया, उसके विषय में सारी संपूर्ण जानकारी हासिल करता था और अगले दिन उसे सब कुछ होने लगता था और डॉक्टर के पास पहुंच जाता था और डॉक्टर कहते थे तुमको कुछ भी नहीं है, वो कहता था तुम अकेले डॉक्टर हो क्या दुनिया में, सेकेंड ओपिनियन, दूसरे के पास जाऊंगा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, पूरा जीवन इसी में गया। अंग्रेजी में इसको कहते हाइपोकॉन्ड्रियाक्स, इन लोगों को कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रियाक्स, जिनको लगता है मुझे कुछ है, ये जो दिख रहा है ना काला काला, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये कैंसर है, इसका देख लो आप क्या है। अच्छा ठीक है, सारी जांच कर ली, सब कुछ कर लिया, निगेटिव आया, फिर भी देख लो आप, और भी कोई जांच हो तो बोल दो, फुल बॉडी का पेट स्कैन वगैरह कुछ करना है तो वो भी करा लेते। वो भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, ठीक है मैंने सुना है आयुर्वेद में इसका कुछ है, वो भी करा लो, होम्योपैथी में इसका कुछ है, दिमागी वहम यहां घुस गया है। और फिर वो व्यक्ति जिसकी हम कहानी बता रहे थे, उसकी एक दिन मृत्यु होने लगती है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी जो कब्र बनेगी वहां पे एक बात जरूर लिखना, वहां पे बोर्ड पर, इन डॉक्टरों के लिए, सुना मैंने बोला था ना मुझे कुछ है, ये जरूर लिखना वहां पर। तो इस ड्रामा का हर सीन कैसा है, कल्याणकारी है, कुछ तो कल्याण है उसमें, कुछ तो एक फायदा छिपा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा है वो, हमारी छोटी छोटी चीनी मिनी आंखों से दिखता नहीं वो। इसलिए जीवन में जो कुछ हुआ उसको स्वीकार भी करना है, और दूसरा क्या करना है, उसके प्रति सोचना है कि इसमें क्या छिपा है कल्याण। एक व्यक्ति के दो बेटे होते हैं, एक होता है साकार टोटल पॉजिटिव, एक होता है टोटल निगेटिव। जो टोटल निगेटिव है पेसिमिस्ट, वो बाप सोचता है एक बार मैं थोड़ा सा प्रयोग करके देखता हूं, उसके का जो कमरा है एक दिन फूलों से सजाता है, सुगंध रखता है, अगरबत्ती लगाता है, अच्छी अच्छी चीजें रखता है कांच की, और देखता है इसका क्या रिएक्शन है। और जो दूसरा बेटा है उसके कमरे में घोड़ा होता है ना, उसकी लीद स्टूल सैंपल, वो पूरा घोड़े की लीद से भर देता है कमरा, रिएक्शन देखने के लिए कि दोनों का क्या होता है। पहला जो होता है जो निराशावादी है, वो कमरे में आता है कहता है ये फूल क्या फायदा, शाम तक कुंभला जाएंगे, ये सुगंध इसका क्या फायदा, थोड़ी देर में ये सुगंध खो जाएगी, ये कांच के सारी चीजें ये गिर के टूट जाएगी, हर चीज में उसे दुखी दिखाई देता है। अपने पिताजी से कहता है ये बहुत दुख है, संसार में केवल दुख है। पिताजी को लगता है ये दूसरे बेटे का क्या हुआ, जिसके कमरे को घोड़े की लीद से भर के रखा था वहां दुर्गंध है पूरी, वो जाकर देखता है तो उसका बेटा उछल उछल के घोड़े की लीद में कुछ ढूंढ रहा है। वो कहता है क्या कर रहे हो, वो कहता है घोड़े की लीद है तो जरूर घोड़ा भी कहीं ना कहीं होगा, उसको ही ढूंढ रहा हूं। वो उसमें भी कुछ तो ऐसा देख रहा है पॉजिटिव। तो जीवन में जो घटनाएं आ रही है उनके प्रति क्या हो, पॉजिटिविटी देखो। ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे कि जीवन में केवल पॉजिटिव ही हो रहा है, निगेटिव ही हो रहा है, बहुत सारा खराब चीजें हो रही है। हम देखते हैं किसी ने हमको धोखा दे दिया, किसी पर विश्वास किया, धोखा देकर चला गया, ठीक है, उससे हमने क्या सीखा, सावधानी सीखी, अंधभक्त नहीं बनना है सीखा, कुछ तो सीखा। जीवन ने जो चोटें दी उन्होंने ही तो सिखाया, अतीत हमारी पाठशाला है, द पास्ट इज अवर स्कूल। कोविड के समय एक स्लोगन आया था, सब तरफ बड़ा फेमस था, एंड द ग्रेटेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। कोविड ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया, सिखाया ना, कितना कुछ सिखा दिया, बेस्ट टीचर अवार्ड। तीसरा है कनेक्ट, जीवन का तीसरा सूत्र क्या है, सदा गीत गाने के लिए कनेक्ट, किससे कनेक्ट, उस परमात्मा से कनेक्ट, स्वयं से कनेक्ट होना। हम सबसे कनेक्टेड है, स्वयं से टूटे हुए, उस भगवान से टूटे हुए, भगवान से भी ज्यादा स्वयं से ही टूटे हुए। सुबह से लेकर रात तक बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, दूसरों के साथ अगर कोई ना हो कमरे में तो बेचैनी होती, अकेला व्यक्ति रह नहीं सकता है, अकेले सोने को किसी को डर लगता है। आपने ट्रेन में देखा होगा ना लोगों को कितने बेचैन होते हैं, कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ करेंगे, अपना बैग खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर उसको बोलेंगे इधर आओ ये कितने का दिया, फिर सामने वाले को पूछेंगे और सुनाओ कहाँ जा रहे हो, वो नहीं तो बाहर देखेंगे कौन है, कुछ तो चाहिए। दोस्ती भी क्यों करते, क्योंकि भीतर खालीपन है, भीतर रिक्तता है, एम्प्टीनेस है। हम प्यार करते हैं, आई लव यू, यू लव मी, पर क्या वास्तव में प्यार है वो? और या फिर अकेलेपन का भय है भीतर, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इज इट रियल लव और इट इज द फीलिंग ऑफ फियर ऑफ आइसोलेशन, कहीं अकेलेपन का भय तो नहीं? इसलिए सबसे पहला स्वयं से कनेक्ट होना है, स्वयं से जुड़ना है और भगवान से जुड़ना है। यही तो यात्रा है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना उठना बैठना, यही सब लक्ष्य है? पद प्रतिष्ठा, पत्नी पति बच्चे संसार पैसा, क्या इससे परे भी कुछ है? क्यों खालीपन है? एक भूख है हर एक के अंदर, एक होती है फिजिकल हंगर, एक होता है मेंटल हंगर, जिसमें व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है और जानना चाहता है, इंफॉर्मेशन इज पावर। तीसरा इमोशनल, उसको प्रेम चाहिए। ये सब है, उससे पूरा नहीं होती है प्यास, कुछ और चाहिए उसको, हायर। पर क्या जिनके पास प्रेम भी मिल गया, ऐसे कितने परिवार है जिसके बहुत खुश रहते हैं सब लोग, सब कुछ अच्छा है, फिर भी देखा गया है किसी एक में डिप्रेशन है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कारण है, ये दुखी क्यों है? वो कहते हैं हम लोग इतना केयर करते हैं इनकी, फिर भी ये दुखी रहते हैं, क्या करें, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है, फिर भी व्हाई? क्योंकि एक चौथे प्रकार का हंगर है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल हंगर। जब तक वो आध्यात्मिक भूख शांत नहीं होती आत्मा की, तब तक उसे बेचैनी रहती है, डिवाइन डिस्कंटेंट। आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल वो अनंत ही बुझा सकता है, और कुछ भी नहीं इस संसार का, कुछ भी मिल जाए कुछ भी, तो भी एक प्यास, एक बेचैनी, एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस, एक वैक्यूम रहता है। और आप सब जो यहां आए हैं स्वयं से जुड़ने के लिए आए हैं, कुछ नया यहां नहीं है, स्वयं ही से जुड़ना है, स्वयं ही को जानना है, और वो भी कोई यहां से नहीं दिया जाएगा कौन हो, केवल कुछ परते हैं, धूल है उसको हटाया जा रहा है, सोना तो वही है। तो तीसरा क्या है, कनेक्ट, और चौथा है डांस विथ एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व के साथ क्या करना है, डांस करना है। इसके साथ बहना है, विपरीत दिशा में नहीं बहना है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अंग्रेजी में किताब लिखी है वाई मी, मैं ही क्यों? 10 लोग जा रहे थे ट्रेन से, गाड़ी से, एक्सीडेंट हो गया, 9 लोग ठीक, एक का ही फ्रैक्चर हो गया, वो यही सोचते रहता है उसको फ्रैक्चर का, अगर सबको फ्रैक्चर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्यों है, मुझे भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, पता नहीं मेरे साथ, ये अभी का नहीं, बचपन से ऐसा ही होता है, माँ बाप ने भी ठीक से मुझे पढ़ाया नहीं, मेरी जो बहन थी ना उसको इंग्लिश मीडियम में, हमको हिंदी मीडियम में डाला, उसको सब कुछ दिया गया, मुझे नहीं दिया। एक के साथ हजारों चीजें कनेक्ट हो जाती है पुरानी, इसको कहते हैं नॉट डांसिंग विथ एग्जिस्टेंस। तो डांस जो चीज है वो हमें खुश करती है, और इवन स्थूल डांस भी खुश करती है। तो अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे। और डायरी पेन पेंसिल नीचे रख देंगे और थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर गायत्री बहन है, तो वो यहाँ पर डांस करेंगे। तो जैसा वो करते हैं सेम स्टेप्स आपको भी कॉपी, इधर से इधर बीच में आ जाओ, सेम स्टेप्स आपको भी कॉपी करना है। सब करेंगे, तो जैसे ही हम डांस करते हैं डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन का गेम है ये सारा, जो संसार में लोग बीड़ी सिगरेट दारू एडिक्शंस करते हैं उसमें क्या रिलीज होता है? डोपामिन। वो एडिक्शन बीड़ी सिगरेट का है ही नहीं। वो जो डोपामिन रिलीज होता है तन बदन में खुशी भर देता है। डांस भी वही काम करता है। तो जैसे बहन जी करेंगे आपको भी सेम वैसा ही करना है। सब रेडी है? रेडी स्टार्ट। सभी करेंगे। तो वातावरण में कौन सी लहरें हैं, खुशी की है या दुख की? आंखें बंद करेंगे और मन ही मन मुस्कुराएंगे। क्या काम करना है? जोर से मुस्कुराओ और जोर से आंखें बंद करके नहीं 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 वैसे नहीं, मुंह बंद और आंखें बंद। अब मुस्कुराओ और जोर से बिना आवाज किए आंखें खोलेंगे। तो इतनी सी खुशी, कितनी खुशी चाहिए? इतनी सी, इतनी भी खुशी आ गई जीवन में तो दुख दूर हो जाए, उदासी दूर हो जाए। तो चौथा सूत्र है डांस विथ एग्जिस्टेंस। अगला, एंजॉय एवरी मोमेंट। हर पल को क्या करना है? एंजॉय करना है। चाहे कुछ भी होते रहे एंजॉय करते रहना। एक विदेशी भारत में आता है, एक मंदिर, एक काम चालू है किसी कंस्ट्रक्शन। एक पहले मजदूर से पूछता है, पहला मजदूर बड़ा दुखी है, बड़ा उदास है, उससे पूछता है तुम क्या करते हो? वो चिल्लाता है चिड़चिड़ाहट में, कहता है देखते नहीं मैं क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं पत्थर। दिन भर तो काम करते रहता हूं, कुछ भी नहीं मिलता है, बस काम करते रहो। ये अमीर लोगों को देखो, आराम से बैठे रहते हैं ऑफिस में, करते कुछ नहीं और कमाते इतना। हम लोग देखो सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ, इतनी धूप में लगा हुआ काम करता हूं, फिर भी पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। वो विदेशी दूसरे मजदूर के पास जाता है और कहता है तुम क्या करते हो? वो उदास बैठा है, कहता है मैं तो क्या करूं, रोजी रोटी कमा रहा हूं, आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, और क्या मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। तीसरे के पास जाता है, वो नाच रहा है, वो झूम रहा है और नाच नाच के झूम झूम के पत्थर का तोड़ रहा है। उससे पूछता है तुम क्या करते हो? वो कहता है मैं तो क्या बताऊं तुमको, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये उसकी अवस्था है। पहला क्या कर रहा है? पत्थर तोड़ रहा है, कठोर पत्थर तोड़ रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? कमाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है? भगवान का मंदिर बना रहा है। अपने आप से प्रश्न पूछना है, मैं सुबह से लेके क्या करता हूं शाम तक? पत्थर तोड़ता हूं ऑफिस जाता हूं तो, या कमाई करता हूं, या खुशी के लिए करता हूं? अपने आप से प्रश्न पूछना है। मैं जब भोजन करता हूं तो क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं, या खुशी के लिए कर रहा हूं? यहां जो आकर बैठे हैं क्या कर रहे हैं अभी? पत्थर तोड़, जो जो पत्थर तोड़ रहा है हाथ खड़ा करो। ये कितना बोरिंग चल रहा है इधर, पता नहीं ये लोग। जिसको देखो आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, इनको कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो तब मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। एक व्यक्ति है, उसको इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, पहले जीवन में तीन टेंशन थी, और फिर लोगों ने कहा इससे फ्री होना ना मेडिटेशन करो, उसके लिए 5 बजे उठना पड़ेगा, पहले 6 बजे उठता था, अब उसको एक नया टेंशन चालू हो गया, 5 बजे उठने का टेंशन। किस लिए? मेडिटेशन के लिए। किस लिए मेडिटेशन? क्योंकि दूसरे तीन टेंशन को दूर करना है, इसलिए एक नया टेंशन चालू हुआ है, 5 बजे उठना है, ताकि मेडिटेशन करने का टेंशन, इस टेंशन को दूर करने के लिए अभी वो एक दूसरे मेडिटेशन को सीख रहा है। तो हम पत्थर तोड़ रहे हैं या फिर कमाई कर रहे हैं, पैसे दिए हैं चुप तो करने हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, या फिर खुशी में नाच रहे हैं और झूम रहे हैं। वो विदेशी चला जाता है, कई कई सालों बाद वापस लौटता है उसी जगह पर, पूछताछ करने उन तीन मजदूरों का क्या हुआ, तो देखता है पहला मजदूर अभी भी पत्थर तोड़ रहा है, वही मजदूर जो पहले तब पत्थर तोड़ रहा था आज भी पत्थर ही तोड़ रहा है, दूसरा मजदूर कहीं दिखाई नहीं देता है, पूछता है वो कहाँ गया, वो अब साहूकार बन गया है, ठेकेदार बन गया है, क्योंकि पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए, और पैसे कमाते कमाते अब उसके अंडर दूसरे लोग हैं जो पत्थर तोड़ते, वो ठेकेदार है, पूछता है ये तीसरा कहाँ है, तीसरा क्या हो गया होगा, वो ना पत्थर तोड़ता है ना साहूकार, वो धर्म गुरु बन चुका है, लोग उसके पास आते हैं कि हम दुखी है कुछ उत्तर दो, दुखस्य कौन कारणम, क्या करे जो जीवन में खुशी आए दुख आए आया है, क्या करें हम इसके लिए, वो लोगों को मार्गदर्शन करता है। हम कौन है स्वयं से पूछना है, दोनों ही मार्ग पर जलना है, एक अध्यात्म एक संसार, उधर भी जलना है इधर भी जलना है, ये ना सोचो कि यहां आ गए तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऐसा नहीं है, उधर भी जलना है इधर भी जलना है, संसार में भी संघर्ष है, उधर भी बहुत संघर्ष है इधर भी संघर्ष है, पर अंतर एक है दोनों में, संसार के मार्ग पर जल जल कर जल जल कर जल जल कर व्यक्ति कोयला बन जाता है, अध्यात्म के मार्ग में भी बड़ी बाधा है बड़ी परीक्षा है, यहां तो संघर्ष अपनी वासनाओं से है, यहां पर जलता है जलता है जलता है जल जल के हीरा बन जाता है जो जगत को प्रकाशित करता है। एक दिन हमने कौन सा मार्ग चुना है स्वयं देखना है। तो 5वां सिद्धांत है एंजॉय एवरी मोमेंट, उसके बाद है एफ अर्थात फॉरगिव, माफ कर दो, लोगों ने बहुत खराब व्यवहार किया है, माफ कर दो, इसलिए नहीं कि हम, इसलिए नहीं उनके लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे ये जो बोझ है भीतर ये नहीं जाएगा, इसलिए चाहे किसने कुछ भी किया हो माफ इसलिए करना है क्योंकि हमारा वो स्वभाव है, दूसरों के प्रति घृणा नफरत और बदले का भाव लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में, चाहे किसने कुछ भी किया हो, क्योंकि जो हो रहा है ये सृष्टि में बड़े सूक्ष्म रहस्य है, जन्म जन्म के ढेर सारे हिसाब यहाँ चुकतू हो रहे हैं, हम नहीं जानते उन्हें, इसलिए हमारे साथ हमको लगता है अन्याय हुआ है और इसने अन्याय किया है, पर शायद वैसा है ही नहीं, किसी जन्म में हम साहूकार होंगे और किसी गरीब किसान की जमीन हड़प ली और उसका पूरा परिवार दर्द से मरा है, हमारे जन जन के दुश्मनी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, हमारा जहां जन्म हुआ है कहां जन्म हुआ है उसी घर में जहां हमारे जन्म जन्म के हिसाब किताब चुकतू हो, बच्चा घर में जन्म लेता है पालना में, कितना मीठा और कितना क्यूट लगता है वो, पर ये ना भूलो उसके हाथ में तलवार है, तलवार लेकर आया है, इसलिए क्या कर देना है माफ कर दो, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे उस बोझ के साथ, जिस जिसने बुरा किया जिस जिसने अपशब्द बोले अपमान किया धोखा दिया निंदा की ग्लानी की ट्रॉल किया कमेंट्स किए जो कुछ किया है, अगर हम भी वही करें तो नया एक कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा और चालू हो जाएगा। इसलिए चाहे तुमने जो भी किया, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हमें क्या करना है, लोगों को माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। अगला है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। किसको धन्यवाद करेंगे? सबको धन्यवाद। लौकिक माँ बाप को धन्यवाद, अपने शिक्षकों को धन्यवाद, जिस जिसने हमें अपने जीवन में कुछ भी सिखाया उन सबको धन्यवाद। अपने दुश्मन, जो हम तो नहीं समझते पर वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, उनको भी धन्यवाद। जिन्होंने हमारे अवगुणों पर PhD की है उनको भी धन्यवाद। जो दिन रात हम पर कमेंट करके दिखाते रहते हैं कि तुम ये हो, भूलना मत, उनका भी धन्यवाद। इस प्रकृति का धन्यवाद, आप जो यहाँ आए, जो आपको लेके आए, सब बहनों का धन्यवाद, यहाँ जो भोजन बना रहे हैं, यहाँ जो सारी व्यवस्था कर रहे, हर एक के प्रति धन्यवाद का भाव, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसमें बड़ी ऊर्जा है। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले बिस्तर पर गए, पूरे दिन के लिए धन्यवाद, आज जो कुछ भी हुआ एक समर्पित कर देना है, थैंकफुलनेस, एक अहोभाव। जब ये धन्यवाद का भाव आ जाता है, जो जीवन के प्रति जो शिकायत है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, वो धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि ये हैबिट हो गई है बार बार रिपीट करने की वजह से। कंप्लेंट कंप्लेंट, हर चीज के प्रति कंप्लेंट। मेक्सिको में दो झरने बहते थे एक ही गांव में, एक में नरम गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, कितना अच्छा। कपड़े धोने के लिए वहां की माताओं को, गृहणियों के लिए गर्म पानी भी और ठंडा पानी भी, एक साथ दो झरने बह रहे। एक जर्नलिस्ट वहां पूछता है लोगों को, पूछने के लिए उनका अनुभव, वो माताएं वहां कपड़े धो रही है, एक ही जगह पर एक ही गांव में दो झरने बह रहे गर्म और ठंडे पानी का। पूछता है आपको क्या लगता है प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार का। एक माता कहती, वो सब तो ठीक है, ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, साबुन का आ रहा है क्या? दुख है कि साबुन नहीं बह के आ रहा है, इतना तो मिल गया पर वो कहां मिला। तो जो अतृप्ति, असंतुष्टता स्वभाव है व्यक्ति का, शिकायत करना एक स्वभाव है, उसको सब कुछ दे दो अच्छे से अच्छा, उसमें भी वो कुछ ना कुछ निकालेगा, वो सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, यहाँ ये सब तो था, पर हम जहाँ साउथ से आए वहां तो इडली डोसा बनता था, वो तो नहीं था आज, तो वो क्यों नहीं है, इसलिए दुखी है। तो दुखी होना, अतृप्त होना, असंतुष्ट होना एक स्वभाव है, उसका वस्तुओं से और प्राप्तियों से और स्थान से कोई संबंध नहीं, वो व्यक्ति का संस्कार बन चुका है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, और वो व्यक्ति ने स्वयं बनाया है, तो ग्रेटिट्यूड। अगला है ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता का भाव। जीवन हमें सिखाता है, इसलिए जो बहुत लदा हुआ वृक्ष होता है ना, झुक जाता है, सीख लो, जीवन ने कुछ सिखा रहा है, जीवन प्रतिपल कुछ सिखा रहा है। हम अपने अहंकार में यदि खड़े रहते हैं, मुझे कौन सिखाएगा, ये लोग और हमको सिखाएंगे, पूछते तुम्हारे, तुमने कोई गुरु किया, गुरु और हम ये सबके गुरु है, हम किसको गुरु करें, अपना एक अहंकार है। जितनी विनम्रता भीतर होगी उतना हम सीखेंगे, सबसे सीखेंगे, छोटे बच्चे से भी सीखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सामने जो बैठा है कौन है, हमें क्या पता, एक दिव्य आत्मा, एक पवित्र आत्मा बैठी है, जन्म जन्म की पवित्रता है, हमें कुछ किसी के विषय में कुछ पता नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। हो सकता है छोटी सी कोई कन्या आ जाए यहाँ बैठे और आप सबको ज्ञान सुनाना चालू करे, हम सोचेंगे ये और हमको सिखाएंगे, हो सकता है कई जन्मों का इंटेलिजेंस, कई जन्म का ब्रह्मचर्य बोल रहा है। तो क्या समझना है, इस सभा में कितने लोग आए हैं, कितने लोग होंगे, 700 समझना है, 700 मेरे गुरु है यहां पर, कितने गुरु है, मेरे 700 गुरु है, सबसे मुझे सीखना है। अगला, इग्नोर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। इस संसार में कोई ना कोई कुछ ना कुछ निंदा तो करेगा ही। लोगों को शांति नहीं मिलती है जब तक तीन चार लोगों की निंदा नहीं कर देते, तो हम क्या प्रभावित होते रहे, दुखी होते रहे? इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। दो शिष्य आपस में लड़ना चालू करते एक आश्रम में। एक शिष्य ने कहा तुम बंदर हो, दूसरा कहता है तुम बंदर हो, और दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गुरु के पास चले जाते हैं। वो कहता है लड़ाई पहले इसने चालू की, वो कहते पहले इसने चालू की, वो कहते बंदर पहले किसने कहा, वो कहते इसने कहा, वो कहते तुमने कहा। गुरु कहता है मैं इतने समय से तुमको सिखा रहा हूं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, वो कभी नहीं तुमने अंदर लिया, बस इसने कहा बंदर है, वो पूरा अंदर समा लिया, पूरा एकदम जैसे खड़े थे। हम चाहते हैं कि दुख से छूटे, परंतु हमें वास्तव में प्यास दुख की है। 10 लोग आते हैं हमारी तारीफ करते हैं, ठीक है ठीक है, फिर एक 11वां आता है वो निंदा करता है, हम एकदम पकड़ लेते हैं उसको, ऐसे लेते हैं और रात भर उसका गहन चिंतन करते हैं। जैसे दुख की प्यास थी, दुख के लिए ही इंतजार कर रहे थे कि अभी तक किसने दुख क्यों नहीं दिया, इतना सब अच्छा कैसे बोल रहे हैं सब लोग। हाँ इसने दिया ना, हाँ अभी अभी मैं दुखी हूं। एब्जॉर्ब करते हैं सौरव को, पकड़ के अंदर बिठाते हैं उसको और जाने नहीं देते। उसको रिपीट करेंगे बार बार, दूसरों को सुनाएंगे, तुमको पता है उसने ऐसा कहा, फिर वो कहेगा हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही कहा था, बस मिल गए दो लोग। तो इग्नोर, ये जो मैसेजेस आते हैं ना कंपनी के, व्हाट्सएप, एयरटेल, वोडाफोन, क्या करते हो आप उसका, क्या करते हो, देखते रहते हो, अच्छा ये क्या है, उसका स्टडी करते हो क्या, या फॉरवर्ड करते हो किसको, क्या करते हो उसका, डिलीट। तो कोई भी आके कुछ भी कहते, अहरा गहरा नथु कहरा, और हम दुखी होते रहे। हमारा रिमोट उसके पास है, वो उधर से दबाता है दुख, यहां से आंसू बहते, फिर वो दबाता है खुशी, तो हम खुश होते। ऐसा चल रहा है उधार का जीवन, गुलामी का जीवन, इमोशनल स्लेवरी। तो दुखी नहीं होना है, जो हो रहा है कुछ ना कुछ रहस्य है उसके पीछे। इंसल्ट भी सहन करने की शक्ति स्वयं में धारण करनी है। अपमान भी होगा, इस ड्रामा में सब होगा। अगला, जर्नी। लाइफ को क्या समझना है, एक यात्रा है। जैसे हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, कितने सीन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे, सीन चला गया, और आगे जाओ खेत खलियान आए, वो चला गया, देख रहे पति पत्नी मिलके झगड़ा कर रहे हैं, हम जाके छुड़ाने जाते नहीं, वो सीन है वो चला गया। एक यात्रा है ये, इसमें हमें गीत गाते रहना है, चाहे कुछ भी होता रहे। और ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का, अपने आप को यात्री समझना, राही समझना है। मैं यात्री हूं, यात्रा कर रहा हूं, सीन आ रहे सीन जा रहे। वो दृश्य था, एक किताब है, किताब के जो चैप्टर हो गए उसको फाड़ो और फेंक दो, उसके बारे में क्या चिंतन करना। ट्रेन में हम बैठ गए, उस स्टेशन में ये अच्छा था, वो अच्छा था, वो वेटिंग रूम, उसका क्या लेना देना, हम आगे बढ़ चुके हैं। जीवन में हजारों बातें आई, वो स्टेशन थे, वो चले गए, आगे बढ़ जाओ और दूसरों को भी मुक्त करो। दूसरों को भी क्या करना है, मुक्त करना है, पकड़ के नहीं रखना है, उसको जाना है, लेट हिम गिव टाइम टू ब्रीद। हर एक को एक स्पेस चाहिए ब्रीदिंग की, निगरानी नहीं रखे रहना है, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मुझे पता रहना चाहिए तुम्हारा सब कुछ, फ्री कर दो। जिससे हम प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि उसको पकड़ के रहे, तो वो प्रेम है ही नहीं। उसको छोड़ दो, अगर छोड़ने के बाद भी वो वापस आ जाए तो वो प्यार है, नहीं तो वो क्या था, एक मालकियत थी। मुक्त कर दो सबको। उसके बाद में है कीप जॉय विदाउट एनी रीजन। कोई कारण है इसलिए खुश होना नहीं है, अकारण खुशी। बस जीवन है, ये अस्तित्व, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है उसके लिए खुशी, अकारण खुशी। हाँ, ये मिल जाए तो खुशी होगी, पैसे मिलेगा तो खुशी होगी, पद मिलेगा तो खुशी, ये पोस्ट मिल जाए तो खुशी, लॉटरी मिलेगी तो खुशी, किसी ने प्यार कर दिया तो खुशी, किसी ने गिफ्ट दिया तो खुशी। ये कैसी खुशी है? डिपेंडेंट हैप्पीनेस है। हमारी खुशी कैसी बनानी है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। आज सब लोग हैं बहुत अच्छा, और आज सब चले जाएंगे तो भी बहुत अच्छा, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम, अच्छा ही है, चले गए, हमारे वो कभी थे ही नहीं, हमने जबरदस्ती पकड़ के रखा था उनको, वो हमारे थे ही नहीं, हमने एक भ्रम से माना था कि ये मेरा है, ये मेरी है। कौन मेरा कौन मेरी, ये नहीं भूलना, इस संसार में हर राही अकेला है, हर एक की अकेले की यात्रा है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की यात्रा, अकेले के तरफ की यात्रा है ये। इसलिए सभी भ्रमों से मुक्त होना, इसलिए कीप दिस जॉय विदाउट एनी रीजन। और लास्ट एक सिद्धांत है लाइटनेस, एल फॉर लाइटनेस। लाइटनेस अर्थात हल्का, जो बोझ है ना इधर सिर पर या पीछे, उसको निकाल के डाल दो। हर एक ने अपने कंधों पर एक बोझ रखा है, उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर है। कौन से पत्थर है? दुख के, दर्द के, पास्ट हर्ट्स के, ट्रॉमा के। हमारे पास एक ओपीडी में माता आती है, इधर माउंट में सीआरपीएफ का बड़ा स्टेशन है, वहां पे ट्रेनिंग होती है। वो लोग पहले उधर थे कश्मीर, तो उसके पति को उसके सामने ही बंदूक से मार दिया गया था। तब से फिर वो डिप्रेशन में चली गई, उधर को छोड़ के वो लोग माउंट में आ गए। दिन रात बस वही एक, रात में उसको वही दिखता था, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। नींद ही नहीं, डिप्रेशन की चार चार गोलियां, फिर काउंसलिंग सेशंस हुए उसके, और धीरे 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 उससे वो बाहर निकली, क्योंकि इतना गहरा दुख था, बहुत बड़ा बोझ, पर धीरे धीरे उससे बाहर आ गई। तो जैसे कहा, हमें भी माफ करना होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम भी वही करें टिट फॉर टैट, तो नए हिसाब बनेंगे, नए दुख जन्म लेंगे। इसलिए नियति ने जो कुछ दिया उसके प्रति धन्यवाद। तो ऐसे ये सूत्र थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला सूत्र था, एक्सेप्ट करो जीवन ने जो कुछ दिया, सुख दिए, दुख दिया, जैसे समुद्र होता है ना, उसमें चाकू फेंको, फूल डालो, वो सब ले लेता है, वो रिजेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये भी ठीक। ये इतना छोटा सा भी एक विचार आया ना, तो हम खुश हो जाएंगे। हमने जीवन में भी कुछ लोगों को रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है कि ये अच्छा नहीं है बिल्कुल, ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अरे, पर हमने एक फिक्स्ड आइडिया बना ली उसके प्रति, वो आगे बढ़ चुका है, उसको भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरा बताया, क्या बिलीव करना है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, हम सब एक्टर्स हैं, हम अभिनय कर रहे हैं। तीसरा बताया, कनेक्ट करना है, किससे? भगवान से, स्वयं से। और यही आर्ट है राजयोग की, जो आप सीखने यहां आए हैं, स्वयं से कैसे जुड़ना, भगवान से कैसे जुड़ना। अगला, डांस विथ एग्जिस्टेंस, बहना है साथ साथ, जैसे पत्ता गिरा, नदी बह रही है, वो उसके साथ बहता है, कितना खुशी से, आराम से बहता है। पर वो पत्ता यदि सोचे मुझे विपरीत दिशा में बहना है, तो फिर दुख है। इसलिए एग्जिस्ट, फ्लो फ्लो फ्लो। अगला, माफ कर देना। उसके बाद में क्या करना है? धन्यवाद का भाव। उसके बाद में विनम्रता। अहंकार में किस बात की अकड़, किस बात की अकड़, कितने राजे महाराजे सब कहाँ चले गए, कोई नहीं रहा। कैसी अकड़, क्या अकड़। हमारे ओपीडी में हम हमेशा उदाहरण देते, एक पेशेंट आता था जिसके पास 6 मोबाइल रहते थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 6 मोबाइल, 6-7 भी होंगे पता नहीं, इतने सारे और लेटेस्ट। हर बार वो कॉल करते थे तो नए नंबर से कॉल आता था, इतना सब उनका। और वो थोड़ा, इनको ये भी था कि मेरे पास ये है। एक बार हम ऐसे कैजुअलिटी के वहां से जा रहे थे हॉस्पिटल की, देखा स्ट्रेचर पर कोई है। हमने कहा क्या है, किसने कहा, ड्यूटी डॉक्टर ने कहा एक ब्रॉड डेड है। ब्रॉड डेड अर्थात घर पे ही डेथ हो गई, डेड बॉडी है। हमने देखा तो ये वही व्यक्ति था। अचानक हार्ट अटैक आ गया, खलास। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते चले गए। हम देख रहे थे ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सोच रहे थे मोबाइल गॉन। अगला, इग्नोर करना है क्रिटिसिज्म जो होते रहता है, ठीक है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। हर एक का अपना विचार है। अभी हमने जो आपको बातें बताई, जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ बैठे सबने बहुत अच्छी लगी, यहाँ से 10-15 ऐसे होंगे बोलेंगे नहीं नहीं ये बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, दे विल रिजेक्ट। इट्स ओके, हर एक का अपना ओपिनियन है, यू एक्सेप्ट यू रिजेक्ट, दैट इज योर डिजायर। जर्नी, जीवन क्या है, यात्रा, आगे बढ़ते जाना है। लोग आगे बढ़ गए, हम भी आगे बढ़ जाए, वो इमोशनल रेंट देते देते जीवन नहीं बिताना है। उसके बाद में जीवन जो है, जॉय जो है वह कैसा होना है, अकारण। और लास्ट बताया लाइटनेस, तो जीवन में क्या हो, लाइटनेस। ओम शांति।